वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर के वचन की संगति में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मैं उन नए मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से पहला शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया और हन्ना ने अपने वचन के अनुसार उसे दूध छुड़ाते ही ले जाकर परमेश्वर को अर्पित कर दिया। फलस्वरूप परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे 3 पुत्र और 2 पुत्रियां और भी उत्पन्न हुई। मेरे मित्रों, एली के पुत्र तो कुकर्मी और अधर्मी थे, इस कारण प्रजा परमेश्वर से दूर होने लगी। एली उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता था, वरन उनके पापों को अनदेखा करता था। इस कारण परमेश्वर ने उसके वंश का अंत करने की घोषणा की और याजकों की अपेक्षा अब भविष्यद्वक्ताओं को अपना वक्ता बनाने की इच्छा की। शमूएल को परमेश्वर की बुलाहट प्रायः बच्चों की कहानियों तक ही सीमित रखी जाती है, परंतु हम इसे नर्सरी से निकाल करके वयस्कों के विभाग तक लाएंगे। यह एक उत्तम कहानी ही नहीं, धर्मशास्त्र में संक्रमण काल का आरंभ ही है। परमेश्वर के राज से मनुष्य के राज तक और याजकों से राजा तक शमूएल को कुल 4 बुलावे आए थे। पहला और दूसरा बुलावा उद्धार का था, पद 7, और उसके अंतिम 2 बुलावे सेवा के निमित्त थे जो पद 10 में है। शमूएल के बुलाए जाने की कहानी बच्चों की आनंददायक कहानी से कहीं अधिक है। इसमें राजतंत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात है। न्यायियों का युग समाप्त हो गया है और अब परमेश्वर याजकों के माध्यम से बातें नहीं करेगा। वह एक याजक भविष्यद्वक्ता को तैयार कर रहा है। शमूएल परमेश्वर की सेवा करेगा, परंतु उसका पद भविष्यद्वक्ता का होगा। वही अभिषेक का तेल दोनों राजाओं शाऊल और दाऊद पर भी डालेगा। परमेश्वर राजाओं से सीधे सीधे बात नहीं करेगा, परंतु भविष्यवक्ता के माध्यम से बात करेगा और भविष्यवक्ता उसके प्रवक्ता होंगे। तो मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहला शमूएल के पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ध्यान दीजिए, मैं बालक शब्द पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह नन्हा बालक नहीं था। इतिहासकार जोसेफुस का कहना है कि वह 12 वर्ष का बालक था और संभवतः किशोर था। शमूएल एक युवक था और एली की उपस्थिति में परमेश्वर की सेवा करता था। 4 वर्षीय बालक भवन में परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता था। मेरे मित्रों, इस पद में यह भी व्यक्त है कि यहोवा का वचन दुर्लभ था। उस समय परमेश्वर दर्शन भी नहीं दे रहा था। जब उसने शमूएल को भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया, तब वह काम करना आरंभ करता है। परमेश्वर न्यायियों और याजकों से हटकर अब भविष्यद्वक्ताओं को काम में लेने के लिए कदम उठाता है। भविष्यद्वक्ता राजा का और राजा के लिए प्रवक्ता होगा। हम पहला शमूएल 3 अध्याय के 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। मिलाप वाले तंबू में दीपक को संभाल कर रखना याजक का कर्तव्य था। उन्हें उसमें तेल भरना होता था और सुनिश्चित करना होता था कि वह सदैव जलता रहे। एली बूढ़ा हो गया था और उसकी दृष्टि भी धूमिल हो गई थी, अतः दीपक बुझने पर था। तब हम आगे देखते हैं, पहला शमूएल 3:4-5 में, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया, तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर से जाकर लेट जा। तो वह जाकर लेट गया। एली ने सोचा कि शमूएल ने स्वप्न देखा होगा और उससे कहा कि जाकर सो जाए। तब हम फिर देखते हैं, पहला शमूएल 3:6 में, तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। मित्रों, यहां हमें ध्यान देना है कि शमूएल को दी गई दो पहली पुकारें उसके उद्धार की थी। तब हम पहला शमूएल 3:7 में पढ़ते हैं, उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। अब देखें, शमूएल परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर उसे उद्धार के निमित्त पुकार रहा था। लेखा देने की आयु क्या है? जो भी रही हो, शमूएल उस आयु में था और अब परमेश्वर उसे उत्तरदायी ठहराएगा। गिनती की पुस्तक में पुरुष 20 वर्ष की आयु से पूर्व युद्ध में नहीं जा सकता था और लेवी 25 वर्ष की आयु तक सेवा में नहीं आ सकते थे। याजक की सेवा आयु सीमा 30 वर्ष की थी। जब इसराइल अविश्वास के कारण जंगल में भटक रहा था, तब केवल 20 वर्ष की आयु से कम इसराइलियों के लिए प्रतिज्ञा के देश में भावी प्रवेश की आज्ञा थी। मैं नहीं जानता कि शमूएल की आयु उस समय क्या रही होगी, परंतु यह तो निश्चित है कि वह एक छोटा बालक नहीं था। क्या 20 वर्ष लेखादायी आयु है? मैं नहीं जानता। मैं केवल यह राय दे रहा हूं कि यह आयु उससे अधिक है जिसका अनुमान हम प्रायः लगाते हैं। अब एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर शमूएल को 5वीं, 6वीं, 7वीं या 5वीं बार पुकारता है? मित्रों, मैं संपूर्ण मन से यह मानता हूं कि उद्धार पाने का एक समय होता है। किसी अज्ञात कवि ने लिखा है, एक समय होता है मैं नहीं जानता कब, एक स्थान होता है मैं नहीं जानता कहां, जो मनुष्य का भाग निश्चित करता है, स्वर्ग का या निराशा का। मनुष्य कब तक पाप में रहेगा, परमेश्वर कब तक सहन करेगा, आशा का अंत और निराशा की सीमा कहाँ है, स्वर्ग से उतर आया। तुम जो परमेश्वर से दूर हो, जब तक आज कहा जाए मन फिराओ और मन कठोर न करो। जी हाँ, स्पष्ट है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं आ पाएगा। जब हरमन गिरिंग अभियोग के समय बंदीगृह में था और जब उसे मृत्युदंड मिलना था, तब बंदीगृह के पुजारी ने उससे लंबी बात की। पुजारी ने बल देकर उससे कहा कि उसे परमेश्वर से साक्षात्कार के लिए तैयार होना होगा। वार्तालाप के मध्य हरमन ने बाइबल के कुछ सत्यों की निंदा की और स्वीकार करने से इनकार किया कि मसीह पापियों के लिए मरा। लहू के सामर्थ का यह विवेकी इनकार था। उसके अंतिम शब्द थे, मृत्यु मृत्यु है। पुजारी ने जब उसे उसकी पुत्री से स्वर्ग में मिलने की बात कही तो उसका उत्तर था, वह अपनी रीति पर विश्वास करती है और मैं अपनी। पुजारी के वहां से जाने के बाद अत्यधिक निराश था। एक घंटा भी नहीं हुआ था कि उसने सुना हरमन ने आत्महत्या कर ली। परमेश्वर ने उसे पुकारा और उसने उसकी पुकार का ध्यान नहीं दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर तो अनेक बार पुकारेगा, परंतु एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य का मन कठोर हो जाता है। नीति वचन की पुस्तक 29:1 में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। मेरे मित्रों, मैं विश्वास नहीं करता कि आप अक्षम्य पाप करते हैं, अर्थात आप आज ऐसा काम करें जिसे परमेश्वर कल क्षमा न करे। क्या परमेश्वर अपना अनुग्रह हटा लेता है? जी नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेगा, परंतु मनुष्य विरोध करता है, विद्रोह करता है और त्याग करता है, जब तक कि उसका विवेक दहकते हुए लोहे से दागा गया हुआ न बन जाए। मेरे मित्रों, कैन, विलाम, शमशोन, कोरह और अहाब सब उस दिन पर पहुंचे जब उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। प्रेरितों के काम अध्याय 24 पद 25 में फेलिक्स के विषय में लिखा है कि जब पौलुस धर्म संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तब उसने डर कर कहा, अभी तो जा, समय मिलने पर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। मेरे मित्र, राजा अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, जिसे हम प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 28 पद में पढ़ चुके हैं, तू थोड़ी ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। मसीह ने एक चोर को उद्धार दिलाया था कि मनुष्य निराश ना हो, परंतु उसने एक ही को इसलिए बचाया कि मनुष्य झूठी कल्पना ना करे। लुकार्ची सुसमाचार 23 अध्याय उसके 39 से 43 पद में भी हम इसे पाते हैं। पहला सामुएल 3 अध्याय उसके 8 से 10 पद में हम आगे पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तू ने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहा और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मेरे मित्रों, ये पद सामुएल के लिए तीसरी और चौथी पुकार है, जो सेवा की पुकार है। तब हम पहला सामुएल 3 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने सामुएल से कहा, सुन, मैं इसराइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरम्भ से अंत तक पूरा करूँगा। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर जब कुछ कहता है तो वह हो जाता है और वह करता है। पुराने नियम में हमारे पास भविष्यवाणी का काल है, यद्यपि वह भूतकाल है, उसमें भविष्यकाल की बातें विहित है। परमेश्वर उन भावी घटनाओं की चर्चा जो नहीं हुई है इस प्रकार करता है जैसे कि वे हो चुकी हैं। यदि परमेश्वर ने कहा कि भविष्य में कुछ होगा तो निश्चय ही वह होगा। परमेश्वर यहाँ शमूएल से कहता है कि वह एली के घराने के विरुद्ध उठेगा। शमूएल अंत समय तक एली का निष्ठावान था, उसने एली की नींव खोदने का प्रयास कभी नहीं किया, उसने जाकर एली को परमेश्वर की वाणी सुना दी। यहाँ मैं आपको चिताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी वरिष्ठ सेवक के अधीन सेवा कर रहे हैं तो उसके साथ निष्ठा निभाने में न चुकें। मुझे यह न समझाएं कि आप मसीह के निष्ठावान हैं, आप परमेश्वर के सेवक के नहीं जो आपके विशिष्ट हैं। ओह, निष्ठावान मनुष्यों की आज कैसी आवश्यकता है। मेरे मित्र, आप सामुएल के जीवन से सीखें कि वह किस प्रकार अपने गुरु के लिए अर्थात एली याजक के लिए निष्ठावान बना रहा। हम पहला सामुएल 3 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यहोवा ने शीलो से फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में सामुएल पर अपने वचन द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ था? वाणी से। आज भी परमेश्वर का प्रकटीकरण उसकी वाणी है। वह धर्मशास्त्र के पृष्ठों को आत्मा के द्वारा प्रकाशित करता है। आप और मैं उसे इसी प्रकार जानते हैं। उसे जानना अनंत जीवन है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे एली और एली के परिवार पर परमेश्वर के दंड का आगमन। शमूएल से पूछे बिना इसराइल फिलिस्तियों से युद्ध करने निकल पड़ा और पराजित हुआ। उन्होंने सोचा कि वाचा का संदूक युद्ध के मैदान में ले जाने से उन्हें विजय प्राप्त होगी। यह उनका अन्य जाति स्वरूप अंधविश्वास था कि किसी वस्तु में शक्ति होती है। वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया और एली के पुत्र मारे गए। वाचा के संदूक के बारे में सुनते ही एली कुर्सी पर से गिरा और मर गया। फिलिस्तियों द्वारा संदूक का छीना जाना। मेरे मित्रों, यह अध्याय निस्संदेह अंधकारपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत करता है। हम इसराइल के उस समय की आत्मिक अवस्था देख सकते हैं। परमेश्वर एली के परिवार के विषय में कहा और अपना वचन उसने पूरा भी किया, अर्थात जिसे हम इस अध्याय में देखेंगे। पहला सामुएल 4 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं, और सामुएल का वचन सारे इसराइल के पास पहुंचा और इसराइली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबनेजर के आसपास छावनी डाली और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली फिलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4,000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला, और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इसराइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलिस्तियों से क्यों हरवा दिया, आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र का यह अंश हमें इसराइल के अंधविश्वास और परमेश्वर से उनकी दूरी की अंतर्दृष्टि को प्रदान करता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि उनकी आत्मनिर्भरता और स्वार्थ कैसा प्रबल था। परमेश्वर की अगुवाई खोजे बिना, वरन विचार किए बिना वे पलिश्तियों से युद्ध करने को निकल पड़े। परिणाम क्या हुआ? वे पराजित हुए। तो यहाँ पर कमी क्या थी? उनके विचार में यदि वाचा का संदूक उनके मध्य होता तो वे विजयी होते। तो उन्होंने सोचा कि जब वाचा का संदूक यर्दन नदी के जल को दो भाग करके रास्ता बना सकता है तो युद्ध में वह हमें विजय भी दिला सकता है। अतः वे वाचा के संदूक को युद्ध के मैदान में ले गए, और मेरे मित्रों, इससे उनका अंधविश्वास और विजातीय मन प्रकट होता है कि वस्तुओं में शक्ति नहीं होती है। उस संदूक में शक्ति नहीं थी क्योंकि परमेश्वर उसमें नहीं था। आप परमेश्वर को संदूक में बंद करके नहीं रख सकते हैं। शक्ति तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके व्यक्तित्व में होती है। मेरे प्रिय मित्रों, आज कलीसिया के कामों में भी अनेक जन ऐसे ही अंधविश्वासी हैं। वे कहते हैं कि इस घर में क्रूस रखो तो इसमें शक्ति आएगी, और बहुत सारे घर में ऐसे ही बातों को लोग लागू करते हैं और कुछ न कुछ करके परमेश्वर से वे दूर होते जाते हैं। इससे आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। आज अनेक विश्वासी इसी दिशा में अग्रसर हैं। मेरे मित्रों, यह आत्मिकता नहीं है, यह अंधविश्वास है। शक्ति मसीह में है। हमारी सफलता निर्भर करती है कि हम मसीह की संगति में हैं या नहीं है। यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। कोई वस्तु या बाइबल या किसी अन्य बातों में नहीं है, परंतु मसीह की शक्ति उसके वचन को मानने, उसके साथ विश्वास योग्य बने रहने में है, जो आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। पहला शमूएल 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इसराइली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। मेरे मित्रों, इसराइल युद्ध में जा रहा है। वे शीलो से वाचा का संदूक मंगवाते हैं। एली के पुत्र होपनी और पिनहास भाड़े के प्रचारक थे। वे वही करेंगे जो आज्ञा उन्हें दी जाएगी। इसराइल महान प्रदर्शन के साथ वाचा का संदूक युद्ध के शिविर में लाते हैं। उनके विचार में यह उनकी आत्मिकता थी, परंतु यह मूर्ति पूजा की अपेक्षा कुछ नहीं था। वे परमेश्वर की नहीं संदूक की उपासना कर रहे थे। हमें अपने कलीसियाई अनुष्ठानों एवं संस्कारों में अति सावधान रहना है। क्या हम किसी कलीसिया की उपासना करते हैं? क्या हम किसी विधि की उपासना करते हैं? क्या हम किसी स्थान विशेष की उपासना करते हैं? या क्या हम सच्चे एवं जीवित मसीह की उपासना करते हैं? क्या हम सच्ची उपासना करते हैं? आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। पहला शमूएल 4 अध्याय उसके 6 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पलिश्तियों ने देखा कि इसराइल की छावनी में वाचा का संदूक आ गया है तो वे डर गए। उन्होंने कहा कि उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। उनके लिए संदूक एक मूर्ति था। इससे प्रकट है कि पलिश्ती अंधविश्वासी और अज्ञानी थे। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर यहोवा के सामर्थ के बारे में सुना था और वे वास्तव में सच्चे एवं जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। मित्रों, हम आगे देखते हैं कि एली की मृत्यु और परमेश्वर की महिमा का इसराइल से प्रस्थान। पलिस्तियों और इसराइलियों में युद्ध होता है और इसराइल पराजित होता है। इसराइलियों का संहार किया गया है और वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया है। होपनी और पिनहास दोनों का भी वध हो चुका है। पहला शमूएल 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, तब एक बिन्यामीनी मनुष्य ने सेना में से दौड़कर उसी दिन अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो में पहुंचा। जब वह पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोह रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में प्रवेश किया, वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वृद्ध एली अपने सब दोषों के उपरांत भी परमेश्वर का महायाजक था और परमेश्वर के वस्तुओं के प्रति चिंतित था। पहला शमूएल 4 अध्याय उसके 14 से 16 पद में आगे लिखा है, चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वहीं से जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भाग आया। वह बोला, मेरे बेटे क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इसराइली पलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इसराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर एली धीरज धरे रहा, परंतु जब उसने सुना कि वाचा का संदूक छीन लिया गया है, तब वह गिर पड़ा और मर गया। वह बहुत मोटा था, अतः संभव है कि उसे हृदय घात हुआ हो। वह दुर्बल और पुत्रों का पाप छिपाने वाला पिता था, परंतु मेरी समझ में वह परमेश्वर का जन था। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और अध्याय 5 से अध्ययन जारी रखते हैं। इसमें हम देखेंगे पलिस्तियों को परमेश्वर का दंड। अध्याय 5 और अध्याय 6 में वाचा के संदूक के साथ पलिस्तियों के अनुभवों का वर्णन किया गया है। उन्होंने सीखा कि संदूक में कोई जादू नहीं था, संदूक की उपस्थिति के कारण उन पर परमेश्वर का हाथ भारी पड़ा। देखिए पहला शमूएल 5 अध्याय उसके 6 पद में, उनके देवता दागोन की मूर्ति गिरकर टूट गई और वहां के निवासियों में गिल्टियां निकली। वाचा का संदूक जहां जहां गया वहां वहां विनाश आया। पलिस्तियों ने भय के कारण वाचा का संदूक गाय गाड़ी पर रखकर भेज दिया और बैलगाड़ी संदूक को लेकर बेतशेमेश को पहुंची। हम देखते हैं पहला शमूएल 5 अध्याय 1 से 4 पद में, और पलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अस्दोत में पहुंचा दिया। फिर पलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। बिहान को अस्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। मेरे मित्रों, वाचा का संदूक छीनकर पलिस्तियों ने सोचा कि उनके हाथ कोई अच्छी वस्तु लगी है। उन्होंने जब जब उसे अपने देवता दागोन के मंदिर में रखा तब तब दागोन की मूर्ति मुंह के बल भूमि पर गिरी पाई गई। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आपको किसी टीका में नहीं मिलेगी। दागोन के भवन में वाचा के संदूक की उपस्थिति में दागोन गिर गया था और उसके सिर और हथेलियां कटी पड़ी थी। तो यह परमेश्वर के विनोदी स्वभाव का प्रदर्शन है। परमेश्वर यहोवा इसराइल पर प्रकट कर रहा था कि उनका देवता उसके सामने शक्तिहीन था। मेरे विचार में तो यह परमेश्वर के विनोदी होने का प्रदर्शन है, क्योंकि इसे देख पलिस्तियों को क्रोध आया था। उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि वाचा का संदूक रखने से कोई लाभ नहीं है, और सच तो यह है कि संदूक उनके लिए संकट सिद्ध हो रहा था। पहला शमूएल 5 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। और यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इसराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। मेरे मित्रों, इस दुर्घटना को प्राकृतिक मानकर उन्होंने वाचा का संदूक अपने किसी अन्य नगर में भिजवा दिया। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला शमूएल 5:8-10 पद में, तब उन्होंने पलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इसराइल के देवता के संदूक से क्या करें। वे बोले, इसराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरोध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एकोन को भेजा और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एकोन में पहुंचा त्यों ही एकोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इसराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। मेरे मित्रों, मैं श्रद्धा से रहित होना नहीं चाहता, परंतु सब अपना संकट दूसरे पर डाल रहे थे। अंत में हम देखते हैं कि पलिस्तियों के हाकिमों ने सभा की और वाचा के संदूक को इसराइल भेज दिया। परमेश्वर ने पलिस्तियों को दंड दिया। उनका एक ही प्रश्न था, हम इसराइल के इस संदूक का क्या करें। मेरे प्रिय मित्रों, आज भी हमारे मसीही जीवन में और कलीसियाओं में कई ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि परमेश्वर के किसी वस्तु को किसी दास के द्वारा प्रार्थना करके अगर हम रख लें तो हमारे घर में आशीषें होंगी, हमारे घर संपत्ति से भर जाएंगे। जी नहीं, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। किसी भी चीज को घर में रखने से आपको आशीष नहीं परंतु हानि ही होगी। आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर के वचन में, उसकी संगति में, उसके भय में आप रहेंगे तो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके कलीसिया में आशीष आएगी। फिलिस्तियों ने सोचा कि हम इस इसराइल के संदूक का क्या करें, और हमने उनके कारणों को देखा कि वे दंड से पीड़ित हुए। मेरे मित्र, आप ऐसा कभी न करें, परमेश्वर के वचन पर और उस पर भरोसा रखें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने इसराइलियों के अंधविश्वास को देखा है। इसलिए आज आप भी निर्णय लें कि आप इस प्रकार के कार्यों को नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर की संगति में बढ़ेंगे, वचन का पालन करेंगे, उसे सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। जिंदगी की राहों में साथ है तेरा, जिंदगी की राहों में साथ है तेरा। तेरे बिन दिखे मुझे घोर अंधेरा, आया है रंग तू एक सवेरा, आया है रंग तू एक सवेरा। धन्य है, पवित्र है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊँ यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु।